दूसरा अंक, पांचवा दृश्य। यजीद का दरबार मुआबिया बेनिया पहने हुए बैठा हुआ है। चार गुलाम नंगी तलवारें लिए उसके चारों तरफ खड़े हैं। यजीद के तख्त के करीब सरजून रूमी बैठा हुआ है। मुआबिया दिल में, नबी की औलाद पर यह जुल्म, मुझी से तो इसका बदला लिया जाएगा। बाप का कर्ज बेटे ही को तो अदा करना पड़ता है, मगर मेरे खून से इस जुल्म का दाग न मिटेगा, हरगिज नहीं। इस खानदान का निशान मिट जाएगा, कोई फातिहा पढ़ने वाला भी न रहेगा। आह, नबी की औलाद पर यह जुल्म, जिनके कदमों की खाक आंखों में लगानी चाहिए थी, तबाही के समान है। ये रसूले पाक, मैं बेगुनाह हूँ प्रकट में। आप जानते हैं मौलाना रूमी के वालिद का मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? रूमी, आते ही होंगे, जियाद से कुछ बातें हो रही हैं। मुआबिया, वालिद मुझसे चाहते हैं कि मैं इस मार्के में शरीक हो जाऊं, लेकिन अगर जालिमों के हाथ से अख्तियार छीनने के लिए, हक की हिमायत के लिए यह पहलू अख्तियार किया जाता, तो सबसे पहले मेरी तलवार म्यान से निकलती, सबसे पहले मैं जिहाद का झंडा उठाता। पर हक का खून करने के लिए मेरी तलवार कभी बाहर न निकलेगी, और मेरी जबान उस वक्त तक मलामत करती रहेगी जब तक वह तालू से खींच न ली जाए। नबी की मसनद पर कुष्ठ में, जिसने दुनिया को हिदायत का चिराग दिखलाया, जिसने इस्लामी कौम की बुनियाद डाली, कुष्ठ बंद, उस शख्स को बैठने का मजाज नहीं है जो दीन को पैरों तले कुचलता हो, जो इंसानियत के नाम को दगा लगाता हो, चाहे वह मेरा बाप ही क्यों ना हो। इस्लाम का खलीफा उसे होना चाहिए जिस पर इंसानियत को गरूर हो, जो दीन दार हो, हक परस्त हो, बेदार हो, बेलौस हो, दूसरों के लिए नमूना हो, जो ताकत से नहीं, फौज से नहीं, अपने कमाल से, अपने सिफात से दूसरों पर अपना वकार जमाए। यजीद, जुहाक, जियाद, शरीक, शम्स आदि आते हैं। यजीद, आप लोग देखिए, यह मेरा सपूत बेटा है जो अपने बाप को कुत्ते से भी ज्यादा नापाक समझता है। मेरी फूलों की सेज में यही एक कांटा है, मेरे नियामतों के थाल में यही एक मक्खी है। आप लोग इसे समझाएं, इसे कायल करें, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। इसको समझाइए कि खलीफा के लिए दीनदारी से ज्यादा मुल्कदारी की जरूरत है। दीन मुल्लाओं के लिए है, बादशाहों के लिए नहीं। दीनदारी और मुल्कदारी दो अलग अलग चीजें हैं, और एक ही जात में दोनों का मेल मुमकिन नहीं। मुआविया, अगर हुकूमत करने के लिए दीन और हक का खून करना जरूरी है, तो मैं गदागरी करने को उससे बेहतर समझता हूँ। मुल्कदारी की मंशा इंसाफ और सच्चाई की हिफाजत करना है, उसका खून करना नहीं। यजीद, आप लोग सुनते हैं इसकी बातें? यह मुझे मुल्कदारी का सबक सिखा रहा है। इसके सिर से अभी सौदा नहीं उतरा, इसे फिर वहीं ले जाओ। ऐसे आदमी को आज़ाद रखना खतरनाक है, चाहे वह तख्त का वारिस ही क्यों ना हो। बाज हालतें ऐसी होती हैं जब इंसान को अपने ही से बचना जरूरी होता है। दीवाने को न रोको तो वह अपना गोश्त काट खाता है। कोष्ठ में, गुलाम मुआविया को ले जाता है। जियात, अब तुम अपनी दास्तान कहो। जब तक तुम मुझे इसका यकीन न दिला दोगे कि तुम कूफा से अपनी जान के खौफ से नहीं, मेरे फायदे के ख्याल से आए हो, मैं तुम्हें मुआफ न करूंगा। ऐसे नाजुक मौके पर, जब शहर में बगावत का हंगामा गर्म हो, सल्तनत के हर एक मुलाजिम का, चाहे वह सूबे का आलिम हो या शाही महल का दरबान, यही फर्ज है कि वह आदमी की जगह पर आखिर तक खड़ा रहे, चाहे उसका जिस्म तीरों से छलनी क्यों न हो जाए। जियाद, या खलीफा, मैं अपने फर्ज से वाकिफ हूँ, पर मैं सिर्फ यह अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इस वक्त रियाया पर सख्ती करने से हालत और भी नाजुक हो जाएगी। जब सल्तनत को किसी दूसरे मुद्दई का खौफ हो, तो बादशाह को रियाया के साथ नरमी का बर्ताव करके उसे अपना दोस्त बना लेना मुनासिब है। बिगड़ी हुई रियाया तिनके की तरह है, जो एक चिंगारी से जल उठती है। मेरी अर्ज है कि हमें इस वक्त रियाया का दिल अपने हाथ में कर लेना चाहिए, उसकी गर्दनें एहसानों से दबा देनी चाहिए ताकि वह सिर न उठा सके। यजीद, मेरी फौज बागियों का सिर कुचलने के लिए काफ़ी है। रूमी, नाजुक मौके पर अगर कोई चीज़ सल्तनत को बचा सकती है तो वह शक्ति है, शायद और किसी हालत में शक्ति की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जुहाक, बादशाह की रियाया उसकी जवजा की तरह है, जवजा पर हम निसार होते हैं, उसके तलवे सुहलाते हैं, उसकी बलाएं लेते हैं, लेकिन जब उसे किसी रकीब से मुखातिब होते देखते हैं तो उस वक्त उसकी बलाएं नहीं लेते, हमारी तलवार म्यान से निकल आती है और या तो रकीब की गर्दन पर गिरती है या बीबी की गर्दन पर या दोनों की गर्दनों पर। रूमी, बेशक कूफा को कुचल दो, कूफा को कुफ्त कर दो। यजीद, कूफा को कुफ्त में डाल दो, यहाँ से जाते ही जाते फौजी कानून जारी कर दो, 1000 आदमियों को तैयार रखो, जो आदमी जरा भी गर्म हो उसे फौरन कत्ल कर दो, सरदारों को एक बार की गिरफ्तार कर लो, फौज को रोजाना शहर में गश्त करने का हुक्म दो, सबकी जबान बंद कर दो, यहाँ तक कि कोई शायर शेर न पढ़ने पाए, मस्जिदों में खुतबे न होने पाए, मकतबों में कोई लड़का न जाने पाए, रईसों को खूब जलील करो, जिल्लत सबसे बड़ी सजा है। एक कासिद आता है, शम्स कहाँ से आते हो? कासिद, खलीफा को मेरा सलाम हो, मुझे मक्का के अमीर ने आपकी खिदमत में यह अर्ज करने को भेजा है कि हुसैन का चचेरा भाई मुस्लिम कूफा की तरफ रवाना हो गया है। यजीद, कोई खत भी लाया है? कासिद, आमिल ने खत इसलिए नहीं दिया कि कहीं मुझे दुश्मन गिरफ्तार न कर लें। यजीद, जियाद तुम इसी वक्त कूफा चले जाओ, तुम्हें मेरे सबसे तेज घोड़े को ले जाने का अख्तियार है, अगर मेरा काबू होता तो तुम्हें हवा के घोड़े पर सवार कराता। जियाद, खलीफा पर मेरी जान निसार हो, मुझे इस मुहिम पर जाने से मुआफ रखिए, जुहाक या शम्स को तैनात फरमाएं। यजीद, इसके मानी यह है कि मैं अपनी एक आँख फोड़ लूँ। रूमी, आखिर तुम क्या चाहते हो? जियाद, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस मौके पर रियाया के साथ मुलायमियत का बर्ताव किया जाए, सरदारों को जागीरें दी जाएं, उनके वजीफे बढ़ाए जाएं, यतीमों और बेवाओं की परवरिश का इंतजाम किया जाए, मैं कूफा वालों की खसलत का गौर से मुताला किया है, वे हयादार नहीं हैं, दिलेर नहीं हैं, दीनदार नहीं हैं, चंद खास आदमियों को छोड़कर सब के सब लोभी और खुदगर्ज हैं, बात पर अड़ना नहीं जानते, शान पर मरना नहीं जानते, थोड़े से फायदे के लिए भाई भाई का गला काटने पर आमादा हो जाते हैं, कुत्तों को भगाने के लिए लाठी से ज़्यादा आसान हड्डी का एक टुकड़ा होता है, सब के सब उस पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को भंभोड़ खाते हैं। खलीफा का खजाना 10-20 हज़ार दिनारों से के निकल जाने से खाली न हो जाएगा, पर एक कौम हमारे हाथ आ जाएगी, सख्ती कमजोरी के हक में वही काम करती है, जो ऐठन तिनके के साथ हम ऐठन के बदले हवा के एक झोंके से तिनकों को बिखेर सकते हैं, फौज से फौज कुचली जा सकती है, एक कौम नहीं। रूमी, मैं तो हमेशा शक्ति का हामी रहा और रहूँगा। शरीक, कामिल हकीम वह है जो मरीज के मिजाज के मुताबिक दवा में तब्दील करता रहे, आपने उस हकीम का किस्सा नहीं सुना जो हमेशा फस्त खोलने की तजवीज़ किया करता था, एक बार एक दीवाने का फस्त खोलने गया, दीवाने ने हकीम की गर्दन इतने ज़ोर से दबाई कि हकीम साहब की जबान बाहर निकल आई, मुल्कदारी के आइन मौके और ज़रूरत के मुताबिक बदलते रहते हैं। यजीद, जियात मैं इस मामले में तुम्हें मुख्तार बनाता हूँ, मुझे भी कुछ कुछ अंदेशा हो रहा है कि कहीं हुसैन के वादे कूफा वालों को लुभा न लें, तुम जो मुनासिब समझो करो, लेकिन याद रखो अगर कूफा गया तो तुम्हारी जान उसके साथ जाएगी, यह शर्त मंजूर है? जियात, मंजूर है। यजीद, हुर को ताकीद कर दो कि बहुत नमाज न पढ़े और मुस्लिम को इस तरह तलाश करे जैसे कोई वकील अपनी कोई मुर्गी को तलाश करता है। तुम्हारी नरमी कमजोरों की नरमी नहीं होनी चाहिए, जिसे खुशामत कहते हैं। उसमें हुकूमत की शान कायम रहनी चाहिए। बस जाओ जी, आप शरीक और कासिद चले जाते हैं। जुहाक, नरगिस को बुलाओ, जरा गम गलत करे। गुलाब के हाथ से शराब का प्याला लेकर, यह मेरी फतह का जाम है रूमी, मुबारक हो। दिल में जियाद तुम्हें डुबा देगा, तब नरमी का मज़ा मालूम होगा। नरगिस जुहाक की पीठ पर बैठी हुई आती है। यजीद, शाबाश नरगिस, शाबाश, क्या खूब खच्चर है। इसकी कोई तशबीह उपमा देना शम्स। शम्स, मुर्ग के सिर पर ताज है। रूमी, लीद पर मक्खी बैठी हुई है। नरगिस गर्दन से कूद कर, ला हौल विला कुव्वत। यजीद, वल्लाह इस तशबीह से दिल खुश हो गया। नरगिस, बस इसी बात पर एक मस्ताना गजल सुनाओ, खुदा तुम्हारे दीवानों को तुम पर निसार करे। नरगिस गाती है, सबे वसल वह रूठ जाना किसी का, वह रूठे को अपने मनाना किसी का। कोई दिल को देखे न तिरछी नज़र से, खता न कर न जाए निशाना किसी का। अभी थाम लोगे तुम अपने जिगर को, सुनो तो सुनाए फिसाना किसी का। जरा देख ले चल के सयाद तू भी, कि उठता है अब आबदाना किसी का। वह कुछ सोच कर हो लिए उसके पीछे, जनाजा हुआ जब रवाना किसी का। बुरा वक्त जिस वक्त आता है बिस्मिल, नहीं साथ देता जमाना किसी का। पर्दा गिरता है। छठा दृश्य। संध्या का समय सूर्यास्त हो चुका है। कुफा का शहर कोई सारवान ऊंट का गल्ला लिए दाखिल हो रहे हैं। पहला, यार गलियों से चलना, नहीं तो किसी सिपाही की नज़र पड़ जाए तो महीनों बेगार झेलनी पड़े। दूसरा, हाँ हाँ वे बला के मोची हैं, कुछ लादने को नहीं होता तो यूं ही बैठ जाते हैं और 10-20 कोस का चक्कर लगाकर लौट आते हैं। ऐसा अंधेरे पहले कभी ना होता था। मजूरी तो भाड़ में गई, ऊपर से लात और गालियां खाओ। तीसरा, यह सब महज पैसे आंटने के हथकंडे हैं, न जाने कहाँ के कुत्ते आके सिपाहियों में दाखिल हो गए। छोटे बड़े एक ही रंग में रंगे हुए हैं। चौथा, अमीर के पास फरियाद लेकर जाओ तो उल्टे और बौछार पड़ती है। अजीब मुसीबत का सामना है, हजरत हुसैन जब तक न आएंगे हमारे सिर से यह बला न टलेगी। मुस्लिम पीछे से आते हैं। मुस्लिम, क्यों यारों, इस शहर में कोई खुदा का बंदा ऐसा है जिसके यहाँ मुसाफिरों के ठहरने को जगह मिल जाए? पहला, यहाँ के रईसों की कुछ न पूछो, कहने को 2-4 बड़े आदमी हैं मगर किसी के यहाँ पूरी मजूरी नहीं मिलती। हाँ, जरा गालियाँ कम देते हैं। मुस्लिम, सारे शहर में एक भी सच्चा मुसलमान नहीं है? दूसरा, जनाब यहाँ कोई शहर के काजी तो है नहीं? हाँ, मुख्तार की निस्बत सुनते हैं कि बड़े दीनदार आदमी हैं। हैसियत तो ऐसी नहीं मगर खुदा ने हिम्मत दी है, कोई गरीब चला जाए तो भूखा न लौटेगा। तीसरा, सुना है उनकी जागीर जब्त कर ली गई है। मुस्लिम, यह क्यों? तीसरा, इसलिए कि उन्होंने अब तक यजीद की बैयत नहीं ली। मुस्लिम, तुम में से मुझे कोई उनके घर तक पहुंचा सकता है? चौथा, जनाब यह ऊँटनियों के दूहने का वक्त है, हमें फुर्सत नहीं, सीधे चले जाइए, आगे लाल मस्जिद मिलेगी, वहीं उनका मकान है। मुस्लिम, खुदा तुम पर रहमत करे, अब चला जाऊंगा। पर्दा बदलता है। मस्जिद के करीब मुख्तार का मकान। मुस्लिम, एक बुढ़े से, यही मुख्तार का मकान है ना? बुढ़ा, जी हाँ, गरीब ही का नाम मुख्तार है, आइए। वहाँ कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मुस्लिम, मक्के शरीफ से। मुख्तार, मुस्लिम के गले से लिपट कर, मुआफ़ कीजिएगा, बुढ़ापे की बिनाई शराबी की तोबा की तरह कमज़ोर होती है। आज बड़ा मुबारक दिन है, बारे हजरत ने हमारी फरियाद सुन ली, खैरियत से है ना? मुस्लिम, घोड़े से उतरकर, जी हाँ, सब खुदा का फजल है। मुख्तार, खुदा जानता है आपको देखकर आंखें शाद हो गईं, हजरत का इरादा कब तक आने का है? मुस्लिम, खत निकाल कर मुख्तार को देते हैं। इसमें उन्होंने सब कुछ मुफस्सल लिख दिया है। मुख्तार खत को छाती और आंखों से लगाकर पढ़ता है। खुशनसीब के हजरत के कदमों से यह शहर पाक होगा। मेरी बैयत हाजिर है और मेरे दोस्तों की तरफ से भी कोई अंदेशा नहीं। गुलाम को बुलाता है। गुलाम, जनाब ने क्यों याद फरमाया? मुख्तार, देखो इसी वक्त हारिस हज्जाज सुलेमान शिमर कीस शेष और हानी के मकान पर जाओ और मेरा यह रुक्का दिखाकर जवाब लाओ। गुलाम रुक्का लेकर चला जाता है। पहले मुझे ऐसा मालूम होता था कि खजरत का कोई कासिद आएगा तो मैं शायद दीवाना हो जाऊंगा, पर इस वक्त आपको सामने देखकर भी खामोश बैठा हुआ हूँ। किसी शायर ने सच कहा है, जो मज़ा इंतजार में देखा वह नहीं उसले यार में देखा। जन्नत का ख्याल कितना दिल फरेब है, पर शायद उसमें दाखिल होने पर इतनी खुशी न रहे। आइए नमाज अदा कर लें, इसके बाद कुछ आराम फरमा लीजिए, फिर दम मारने की फुर्सत न मिलेगी। दोनों मकान के अंदर चले जाते हैं। पर्दा बदलता है। मुस्लिम और मुख्तार बैठे हुए हैं। मुस्लिम, कितने आदमी बैयत लेने के लिए तैयार हैं? मुख्तार, देखिए सब अभी आ जाते हैं। अगर यजीद की जानिब से जुल्म और सख्ती इसी तरह होती रही तो हमारे मददगारों की तादाद दिन दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन कहीं उसने दिलजोई शुरू कर दी तो हमें इतनी आसानी से कामयाबी न होगी। सुलेमान का प्रवेश। सुलेमान, अस्सलाम अलैक हजरत मुस्लिम, आपको देखकर आंखें रोशन हो गईं। मेरे कबीले के सब आदमी बैयत लेने को हाजिर हैं और सब के सब अपनी बात पर मिटने वाले आदमी हैं। मुस्लिम, आपको खुदा नजात दे। इन आदमियों से कहिए कल जामा मस्जिद में जमा हूँ। आपका खत पढ़कर भैया को बहुत रंज हुआ। उन्होंने तो फैसला कर लिया कि रसूल के मजार पर बैठे हुए जिंदगी गुजार दें, पर आपके आखिरी खत ने उन्हें बेकरार कर दिया। सायल की हिमायत से वह कभी नहीं मुंह मोड़ सकते। शेष की सिमर साद और हज्जाज का प्रवेश। शेष, अस्सलाम अलैक हजरत, आपको देखकर जिगर ठंडा हो गया। कीस, अस्सलाम अलैक, आपके कदमों से हमारे वीरान घर आबाद हो गए। हज्जाज, अस्सलाम अलैक, आपको देखकर हमारे मुर्दा तन में जान आ गई। मुस्लिम सबसे गले मिलकर, हजरत इमाम ने मुझे यह खत देकर आपकी खिदमत में भेजा है। शिमर खत लेकर ऊंची आवाज़ से पढ़ता है और सब लोग सिर झुकाए सुनते हैं। शेष, हमारे जहे नसीब, मैं तो अभी दस्तरखान पर था, खबर पाते ही आपकी जियारत करने दौड़ा। हज्जाज, मैं तो अभी अभी बसरे से लौटा हूँ, दम भी न मारने पाया था कि आपके तशरीफ लाने की खबर पाई। मेरे कबीले के बहुत से आदमी बैयत लेने को बाहर खड़े हैं। मुस्लिम, उन्हें कल जामा मस्जिद में बुलाइए। शिमर, वह कौन सा दिन होगा कि मलऊन यजीद के जुल्म से नजात होगी? सैस, हजरत हुसैन ने हम गरीबों की आवाज़ सुन ली, अब हमारे बुरे दिन न रहेंगे। कि इस हमारी किस्मत के सितारे अब रोशन होंगे। मेरी दिली तमन्ना है कि गियात का सिर अपने पैरों के नीचे देखूं। शिमर, मैंने तो मिन्नत मानी है कि मलऊन जियात के मुंह में कालिख लगाकर सारे शहर में फिराऊं। कीस, मैं तो यजीद की नाक काटकर उसकी हथेली पर रख देना चाहता हूँ। हानी कसीर और अश का प्रवेश। हानी, या बिरादर हुसैन, आप पर खुदा की रहमत हो। कीस, अल्लाह ताला आप पर साया रखे, हम सब आपकी राह देख रहे थे। मुस्लिम, भाई साहब ने मुझे यह खत देकर आपकी तस्कीन के लिए भेजा है। हानी खत लेकर आंखों से लगाता है और आंखों में ऐनक लगाकर पढ़ता है। शिमर, अब जियाद की खबर लूंगा। कि इसमें तो यजीद की आंखों में मिर्च डालकर उसका तड़पना देखूंगा। मुस्लिम, आप लोग भी कल अपने कबीले वालों को जामा मस्जिद में बुलाएं। कल 3-4 हज़ार आदमी आ जाएंगे। शेष, खुदा झूठ न बुलवाए तो इसके 10 गुने हो जाएंगे। हानी, नबी की औलाद की शान और ही है, वह हुस्न, वह इखलाक, वह शराफत कहीं नज़र नहीं आती। कि इस यजीद को देखो खासा हबशी मालूम होता है। हज्जाज, जियाद तो खासा सारवान है। मुस्लिम, तो कल शाम को जामा मस्जिद में आने की ठहरी। शिमर, तो हम लोग चलकर अपने कबीलों को तैयार करें ताकि जो लोग इस वक्त यहाँ ना हों वे भी आ जाएं। सब लोग चले जाते हैं मुस्लिम दिल में, ये सब कुफा के नामी सरदार हैं, हमारी फतह जरूर होगी और एक बार तकदीर को चक उठानी पड़ेगी। 20,000 आदमियों की बैयत मिल गई तो फिर हुसैन को खिलाफत की मसनद पर बैठने से कौन रोक सकता है, जरूर बैठेंगे। सातवां दृश्य, कूफा के चौक में कई दुकानदार बातें कर रहे हैं। पहला, सुना आज हजरत हुसैन तशरीफ लाने वाले हैं। दूसरा, हाँ कल मुख्तार के मकान पर बड़ा जमघट था, मक्का से कोई साहब उनके आने की खबर लाए हैं। तीसरा, खुदा करे जल्द आवे, किसी तरह इन जालिमों से पीछा छूटे, मैंने बैयत तो यजीद की ले ली है लेकिन हजरत आएंगे तो फौरन फिर जाऊंगा। चौथा, लोग कहते थे बड़ी धूमधाम से आ रहे हैं, पैदल और सवार फौजे हैं, खेमे वगैरह ऊँटों पर लदे हुए हैं। पहला, दुकान बढ़ाओ हम लोग भी चलें, तकदीर में जो कुछ बिकना था बिक चुका, आकबत की भी तो कुछ फिक्र करनी चाहिए, चौंक कर, अरे बाजे की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। दूसरा, आ गए शायद, सब दौड़ते हैं, जियाद का जुलूस सामने से आता है, जियाद मिंबर पर खड़ा हो जाता है, कई आवाज़ें, मुबारक हो या हजरत हुसैन। जियाद, दोस्तों मैं हुसैन नहीं हूँ, हुसैन का अदना गुलाम, रसूल पाक के कदमों का निसार होने वाला आपका नाचीज खादिम बिन जियाद हूँ। एक आवाज़, जियाद है, मलून जियाद है। दूसरा, गिरा दो मिंबर पर से, उतार दो मरदूत को। तीसरा, लगा दो तीर का निशाना, जालिम की जबान बंद हो जाए। चौथा, खामोश खामोश सुनो क्या कहता है। जियाद, अगर आप समझते हैं कि मैं जालिम हूँ तो बेशक मुझे तीर का निशाना बनाइए, पत्थरों से मारिए, कत्ल कीजिए, हाजिर हूँ। जालिम गर्दन जंसनी है और जो जुल्म बर्दाश्त करे वह बेगैरत है, मुझे गरूर है कि आप में गैरत है, जोश है। कई आवाज़ें, सुनो सुनो खामोश। जियाद, हाँ मैं गैरत से गुरूर से नहीं डरता, क्योंकि यही वह ताकत है जो किसी कौम को जालिम के हाथ से बचा सकती है। खुदा के लिए उस जुल्म की नाकदरी न कीजिए जिसने आपकी गैरत को जगाया, यही मेरी मंशा थी, यही अजीत की मंशा थी, और खुदा का शुक्र कि हमारी तमन्ना पूरी हुई, अब हमें यकीन हो गया कि हम आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जालिम उस्ताद की भी कभी कभी ज़रूरत होती है, हजरत हुसैन जैसा पाक नियत दीनदार बुजुर्ग आपको यह सबक न दे सकता था, यह हम जैसे कमीना खुदगरज आदमियों ही का काम था, लेकिन अगर हमारी नीयत ख़राब होती तो आप आज मुझे यहाँ खड़े होकर उन रियायतों का ऐलान करते न देखते जो मैं अभी अभी करने वाला हूँ। इन ऐलानों से आप पर मेरे कौल की सच्चाई रोशन हो जाएगी। कई आवाज़ें, खामोश खामोश सुनो सुनो। जियाद, खलीफा यजीद का हुक्म है कि कूफा और बसरा का हर एक बालिग मर्द 500 दिरहम सालाना खजाने से पाए। बहुत सी आवाज़ें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जियाद, और कूफा व बसरे की हर एक बालिग औरत 200 दिरहम पाए जब तक उसका निकाह न हो। बहुत सी आवाज़ें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जियाद, और हर एक विवाह को 100 दिरहम सालाना मिले जब तक उसकी आंखें बंद न हो जाएं या वह दूसरा निकाह न कर ले। बहुत सी आवाज़ें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जियाद, यह मेरे हाथ में खलीफा का फरमान है, देखिए जिसे यकीन न हो, हर एक यतीम को बालिग होने तक 100 दिरहम सालाना मुकर्रर किया गया है, हर एक जवान मर्द और औरत को शादी के वक्त 1,000 दिरहम एक मुश्त खर्च के लिए दिया जाएगा। बहुत सी आवाज़ें, खुदा खलीफा यजीद को सलामत रखे, कितनी फयाजी की है। जियाद, अभी और सुनिए तब फैसला कीजिए कि यजीद जालिम है या रियाया परवर। उसका हुक्म है कि हर एक कबीले के सरदार को दरिया के किनारे की उतनी ज़मीन अता की जाए जितनी दूर उसका तीर जा सके। बहुत सी आवाज़ें, हम यजीद की बैयत मंजूर करते हैं, यजीद हमारा खलीफा है। जियाद, नहीं, यजीद बैयत के लिए आपको रिश्वत नहीं देता, बैयत आपके अख्तियार में है, जिसे जी चाहे दीजिए। यजीद हुसैन से दुश्मनी करना नहीं चाहता, उसका हुक्म है कि नदियों के घाट का महसूल मुआफ़ कर दिया जाए। बहुत सी आवाज़ें, हम यजीद को अपना खलीफा तस्लीम करते हैं। जियात, नहीं नहीं, यजीद कभी हुसैन के हक़ को जायल न करेगा। हुसैन मालिक हैं, फाजिल हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, यजीद को इनमें से कोई सिफर रखने का दावा नहीं। यजीद में अगर कोई सिफत है तो यह कि वह जुल्म करना जानता है, खासकर नाजुक वक्त पर, जब माल और जान की हिफाजत करने वाला कोई न हो, जब सब अपने हक और दावे पेश करने में मसरूफ़ हों। बहुत सी आवाज़ें, जालिम यजीद ही हमारा अमीर है, दिल से उसकी बैयत कबूल करते हैं। जियात, सोचिए और गौर से सोचिए, अगर खिलाफत के दूसरे दावेदारों की तरह यजीद भी किसी गोशे में बैठे हुए बैयत की फिक्र करते तो आज मुल्क की क्या हालात होती? आपकी जान व माल की हिफाजत कौन करता? कौम मुल्क को बाहर के हमलों से और अंदर की लड़ाइयों से बचाता? कौन सड़कों और बंदरगाहों को डाकुओं से महफूज रखता? कौन कौम की बहु बेटियों की हुरमत का जिम्मेदार होता? जिस एक आदमी की जात से कौम और मुल्क को नाजुक मौके पर कितने फायदे हुए हों, और जिसने खलीफा चुने जाने का इंतजार न करके ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सिर पर ले ली हों, क्या वह इसी काबिल है कि उसे मलऊन और मर्दूद कहा जाए, उसे सरे बाजार गालियाँ दी जाएँ? एक आवाज़, हम बहुत नादिम हैं, खुदा हमारा गुनाह मुआफ़ करे। शिमर, हमने खलीफा यजीद के साथ बड़ी बेइंसाफी की है। जियात, हाँ आपने ज़रूर बेइंसाफी की है, मैं यह बिला खौफ कहता हूँ, ऐसा आदमी इससे कहीं अच्छे बर्ताव के लायक था। हुसैन की इज्जत यजीद के और मेरे दिल में उससे ज़रा भी कम नहीं है जितनी और किसी के दिल में होगी। अगर आप उन्हें अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो मुबारक हो, हम खुश, हमारा खुदा खुश। यजीद सबसे पहले उनकी बैयत मंजूर करेगा, उसके बाद मैं हूँगा। रसूल पाक ने खिलाफत के लिए इंतखाब की शर्त लगा दी है, मगर हुसैन के लिए इसकी कैद नहीं कि है, यह कैद सबके लिए एक। जियात, अगर है तो इंतखाब का बेहतर और कौन मौका होगा? आप अपनी रजा और रगबत से किसी का लिहाज और मुरव्वत किए बगैर जिसे चाहें खलीफा तस्लीम कर लें। मैं कसरत राय को मानकर यजीद को इसकी इत्तिला दे दूंगा। एक तरफ से हम यजीद को खलीफा मानते हैं, दूसरी तरफ से हम यजीद की बैयत कबूल करते हैं, तीसरी तरफ से यजीद यजीद यजीद। जियात, खामोश हुसैन को कौन खलीफा मानता है? कोई आवाज़ नहीं आती। जियात, आप जानते हैं यजीद आबिद नहीं। कई आवाज़ें, हमें आबिद की ज़रूरत नहीं। जियात, यजीद आलिम नहीं, फाजिल नहीं, हाफिज नहीं। कई आवाज़ें, हमें आलिम फाजिल की ज़रूरत नहीं। हज्जाज, कितना फैयाज है। सिमर, किसी खलीफा ने इतनी फैयाजी नहीं की। शैश, आबिद कभी फैयाज नहीं होता। अश अस अजी, कुछ न पूछो, मस्जिदों के मुल्लाओं को देखो, रोटियों पर जान देते हैं। जियात, अच्छा यजीद को आपने अपना खलीफा तो मान लिया, लेकिन हिजाज मिस्र यमन के लोग किसी और को खलीफा मान लें तो? बहुत आदमी, हम खलीफा यजीद के लिए जान दे देंगे। जियात, बहुत मुमकिन है कि हजरत हुसैन ही को वे लोग अपना खलीफा बनाएं, तो आप अपना कौल निभाएंगे? बहुत आदमी, निभाएंगे, यजीद के सिवा और कोई खलीफा नहीं हो सकता। जियात, मैंने सुना है हजरत हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम को आपकी बैयत लेने के लिए भेजा है, और शायद खुद भी आ रहे हैं। यजीद को गोशे में बैठकर खुदा की याद करना इससे कहीं अच्छा मालूम होगा कि वह इस्लाम में निफाक की आग भड़काएं। अभी मौका है, आप लोग खूब गौर कर लें। शिमर, हमने खूब गौर कर लिया है। हज्जाज, हुसैन को न जाने क्यों खिलाफत की हवस है, बैठे हुए खुदा की इबादत क्यों नहीं करते? कि इस हुसैन मदीने वालों के साथ जो सलूक करेंगे वह कभी हमारे साथ नहीं कर सकते। शेष, उनका आना بلا کا آنا ہے۔ جیات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے تو خبردار اس وقت ایک آدمی بھی جامع مسجد میں نہ جائے۔ حسین آئیں ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کی تعظیم کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، لیکن انہیں خلافت کا دعویٰ پیش کرتے دیکھیں گے تو ملک میں امن رکھنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہی آپ کی آزمائش کا وقت ہوگا اور اسی میں پورے اترنے پر اسلام کی زندگی کا دارمدار ہے۔ ممبر پر سے اتر آتا ہے شیش، بڑی غلطی ہوئی کہ حسین کو خط لکھا۔ شمر، میں تو اب جامع مسجد نہ جاؤں گا۔ کیس، یہاں کون جاتا ہے؟ شیش، کاش انہیں رعایتوں کا چند روز پہلے اعلان کر دیا گیا ہوتا تو خط لکھنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ شمر، دین کی فکر موٹے آدمی کریں، یہاں دنیا کی فکر کافی ہے۔ سب جاتے ہیں۔